かな。わかる。
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈکشن تو بریف سا کرا دیا ہے. محمد احمد ظفر نام ہے میرا اور میری بیسک ایجوکیشن اور میری فیلڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے. الوداع کے اندر بھی میں انوالو رہا ہوا ہوں 2004, 5, 6 اور 7 تک. تو اس سے ریلیٹڈ یہ کہ یہاں پہ بھی میں نے کافی کچھ موٹیویشن ہوئی تھی. یہاں پہ تب کورس تو نہیں ہوتے تھے لیکن جو ویلفیئر کے کام تھے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر میں نے کام کافی حد تک کیا ہوا ہے. جس یونیورسٹی کے اندر میں پڑھا رہا ہوں فار دا لاسٹ 8 ایئرز اپراکسیمیٹلی وہاں پہ میرا مین سبجیکٹ اگین کمپیوٹر ہی ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ڈگری پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا بیس سسٹمس, جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ موبائل اپلیکیشنز ہیں, ویب سائٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ادھر ہی ساتھ میں ایک اور کلاس لیتا ہوں, اسلامک کلاس, جہاں پہ آف کورس کو ایجوکیشن یونیورسٹی ہے وہ. تو ادھر جو بیچ فری ہوتا ہے, جو ٹائم سلاٹ کوئی فری ہوتی ہے ویک میں ونس, اس کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے آگاہی کے نام سے. اس کے اندر شروع میں تو صرف جنرل ٹاپکس ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے قرآن اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی جو ہے سورہ آل عمران جو ہے اس کا اسٹارٹ ہے. تو اپراکسیمیٹلی 7 سال ہو گئے ہیں, 6.5 سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے. تو ابھی تک صرف یہاں تک ہی پہنچے ہیں سورہ آل عمران تک. تو اس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ میری اپنی بھی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو اس لیے کوئی اسٹیریو ٹائپنگ نہیں ہے. اور اسی طرح ہی کیونکہ میری اپنی فیلڈ بھی دوسری ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایج گروپ کا بھی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, تو اس لیے اس لیول کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کا لیول ہے, جو پرابلمس اس ایج کے اندر ینگ لڑکے اور لڑکیاں فیس کرتے ہیں, تو اس حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرنا. تو آپ لوگ تو خیر ماشاء اللہ ابھی قرآن کورس آپ لوگوں کا کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا, آپ لوگوں نے انٹروڈکشن بھی سارا کر لیا, کافی ایڈوانس چیزیں بلکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. علمی لحاظ سے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس بتانے کے لیے کہ جو اس سے آپ لوگ کہیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے نئی تھیں. کچھ جو ایگزسٹنگ باتیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے کوئی بہت زیادہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت کوئی ریفرنسز بتاؤں گا بہت زیادہ اور اس طرح. لیکن جو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ہوپ فلی آپ لوگ اس چیز کو ٹچ کر سکیں, فیل کر سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں, اگر میں کہوں آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو کاؤنٹ کریں, کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بلیسنگز آپ لوگوں کو دی ہے, تو کس طرح کی باتیں مائنڈ میں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے الحمدللہ, سب کو صحت دی ہے, کسی کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں دی, سب اللہ کا شکر ہے دیکھ سکتے ہیں, چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ چلنا دوڑنا ہے, کوئی اسی قسم کا کوئی فزیکل ڈسیبلٹی نہیں ہے. ایک صاحب تھے جن کو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک خاص کام کے لیے, ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے اندر میں انوالو ہوں, تو ایک جگہ کو لینی تھی اسکول کے لیے, رینٹ کی جگہ لینی تھی. تو پتہ لگا ایک فلانے پراپرٹی ڈیلر ہیں, ان کے پاس جائیں گے ہم لوگ اور ان سے جا کے بات کرنی ہے. تو جب میں ان سے ملنے گیا تو باتیں تو وہ بہت بڑی کر رہے تھے کہ جس طرح کہ یہ فلانی چیز جو ہے ہم نے لی, اپنے تھوڑا سا ایک پروفائل شاید شو کر رہے تھے کہ یہ تو 1 کروڑ کی تھی, ہم نے اس طرح کیا, اتنے پارٹنر شامل ہوئے, جو بھی بڑی باتیں کر رہے تھے. ان کے اندر ایک ڈسیبلٹی پتہ کیا تھی؟ ان کی ایک آنکھ کی جو لیڈ ہے نا یہ بند رہتی تھی, اس کا کوئی مسل ایسا تھا جو کہ ڈیمیج تھا کہ وہ آنکھ, ایک آنکھ کا جو ہے نا ایک آنکھ کھل نہیں سکتی تھی. یعنی کہ اگر آنکھ اٹھائیں, ہاتھ سے اٹھائیں اس کو پلک کو, تو آنکھ ٹھیک ہے اندر سے, لیکن یہ جو اس کا مسل تھا نا یہ ڈیمیج تھا. تو میرے ذہن میں ایک تو اللہ کا شکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہمیں نہیں دی, اور دوسرا یہ بھی آیا کہ اب اس کے پاس, بندے کے پاس جتنا پیسہ ہے جو کچھ بھی ہے اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس طاقت نہیں رکھتا کہ یہ اس کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کر سکے, وہ اس کو ریپیئر کر دے کسی طرح سے, ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مجھے بھی دی اور آپ کو بھی دی ہے, صرف آنکھ کی بات ہو رہی ہے, آنکھ کا یہ جب جھپکنے کی بات ہو رہی ہے, یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جو نہ میں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کبھی, اور نہ ہی یہ کہ اس کو سسٹین کرنے کا, یہ قائم رہے, یہ اسی طرح چلتی رہے, یہ بھی نہ مانگتا ہوں میں. ابھی آپ لوگ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں, آپ لوگوں نے مثال کے طور پر اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں مانگی نا. یہ وہ تمام وہ نعمتیں کون سی ہیں جو फॉर ग्रांटेड ली हुई हमने, जो हमने इसको कभी अल्लाह ताला का शुक्र भी नहीं अदा किया इन चीज़ों के ऊपर कि हाँ ये भी कोई नेमत है, इसको भी काउंट किया जा सकता था ये नेमत के तौर पे। इसी तरह बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं, अब मैं यहाँ पे इस फोरम के ऊपर नाम लिए बगैर बताऊँगा कि बिलफर्ज पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े बड़े नाम है, ये नाम नहीं लेता कि वो हलाल से कमाया उन्होंने हराम से कमाया, लेकिन बहरहाल जब भी कोई बिजनेस की बात होती है या कोई प्रॉपर्टी की बात होती है तो उन नामों में से एक नाम बहुत बड़ा। अब उसके एक टीवी टॉक शो के अंदर खाने पीने से रिलेटेड बात हुई थी तो उसने क्या कहा था कि मैं चावल नहीं खा सकता, मैं रोटी नहीं खा सकता। और जब बात थोड़ी सी और पूछा गया कि फिर आप क्या खाएंगे, उसने कहा कोई बॉयल्ड चीज़ होगी तो वो खा लूँगा मैं। तो वो बंदा जिसके बारे में इतना है जिक्र आता है कि वो इतना बड़ा नाम है और उसको अल्लाह ताला ने ये नेमत दी हुई है कि वो खाने पीने की सिंपल चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकता, यानी कि आपको अगर दिल चाह रहा है आप कोई भी खाने की चीज़ चाहे वो महंगी हो सस्ती हो चाहे वो रेडी से मिल रही हो या चाहे किसी बहुत बड़े फूड कोर्ट से मिल रही हो, आप वहाँ जाके लेंगे परचेज करेंगे खा लेंगे इंजॉय करेंगे आप और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करेंगे। तो उस बंदे के पास इतना पैसा इतना कुछ है लेकिन वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये तमाम नेमतें वो हैं जो हम लोग काउंट नहीं करते। हमने कभी अल्लाह ताला से ना मांगा कभी हमने ये चीज़, और ना ही हमने कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इन चीज़ों के ऊपर, और ना ही कभी ये किया हमने कि अल्लाह ताला कायम रखे ये सेहत जो है ये कायम रखे। और नेमतें अगर काउंट करना चाहें, अगर आप लोग और चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं कि और क्या नेमत है उसके ऊपर, तो उसमें एक नेमत ये भी आएगी जहन के अंदर कि हाँ ठीक है अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया माल भी दिया, ये भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह पर पैदा करता है जिस तरह ये फुटपाथ के ऊपर और ये जो सिग्नल्स के ऊपर लोग मांग रहे होते हैं, तो इनकी गोद में अक्सर जो औरतें मांग रही होंगी उनकी गोद में एक बच्चा होगा, तो अल्लाह ताला यहाँ भी तो पैदा कर सकते थे। ये मैंने तो नहीं मांगा था ना अल्लाह ताला से कि मुझे कहाँ पैदा करना है, ये मेरा तो कोई चॉइस नहीं थी इसके अंदर कि मैं अल्लाह ताला को कह सकूँगा कि हाँ ये जो है ना ये मेरे लिए सूटेबल है एक्सेप्टेबल है ये। तो ये भी नेमत है अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी। फिर ये भी नहीं कि ऐसी घराने में पैदा किया जहाँ पे हलाल हराम की भी तमीज़ है। और नेमतें अगर काउंट करना शुरू हो जाएं आप लोग तो इस तरह की आएंगी कि आपके रिलेटिव जो हैं आपके दोस्त हैं आपके बहन भाई हैं आपके पेरेंट्स हैं, ऑल दो पेरेंट्स को तो शायद कोई नेमत में कोई काउंट ही नहीं करता है सच, वो नेमत ही समझेंगे नॉर्मली, लेकिन ये है कि वो जितने रिश्ते या जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपको गेन दिया जो आपने मांगा नहीं था, ये तमाम चीज़ें नेमतें काउंट होती हैं। आपको जवानी दी है, सेहत दी है, पैसा दिया है, माल दिया है, रिश्तेदार दिए हैं, ख्याल रखने वाले लोग दिए हैं, दोस्त दिए हैं, वो तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन असल नेमत क्या है, असल नेमत क्या है? असल नेमत अल्लाह ताला ने जो आपको दी है वो ये दी है कि आपको एक मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, एक ऐसे घर में पैदा कर दिया आपको अल्लाह ताला ने जहाँ पर आपको इस्लाम भी मांगना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, आपको अल्लाह ताला ने दे दिया। एक ऐसे घर में पैदा कर दिया कि जहाँ पर आपने कानों में अजान पड़ गई आपके, आपने मांगी नहीं थी वो, आपने पेरेंट्स को देखा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने भी कॉपी कर लिया नमाज पढ़ना उस तरह। तो ये नेमतें वो हैं सबसे बड़ी नेमत, जितनी भी नेमतें हम काउंट कर सकते हैं ना उनमें से तमाम नेमतों में बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूँ कह लेता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें ईमान की दौलत दी, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी। और अगर इसका डीप एनालिसिस करना शुरू हो जाए हम लोग तो ये बात क्लियर होगी कि असल नेमत जो है वो सिर्फ ये एक ही नेमत है, नेमत है ईमान। और इसका रिलेशनशिप बाकी तमाम नेमतों के साथ ऐसे है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने नेमत ईमान दी थी और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको पैसा भी दे दिया था तो वो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत बनेगा पैसा। लेकिन अगर ईमान नहीं था, ईमान से बिल्कुल खाली थे और बहुत पैसा दे दिया तो यही आपके लिए वबाले जान बनेगा, ये आपके लिए नेमत नहीं होगी, जहमत होगी क्यामत वाले दिन, मुसीबत होगी आपके लिए। तो मैथ्स के हिसाब से क्या समझते हैं ऐसे कि जिस तरह मैथ्स के अंदर एक एब्सोल्यूट का फंक्शन होता है कि उसको जो भी वैल्यू दी जाती है ना उसको वो हमेशा पॉजिटिव बना देता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू थी या कोई नेगेटिव वैल्यू थी, उसको जब भी आप ABS के अंदर मैथ्स कर पढ़ी हुई आप लोगों ने एब्सोल्यूट करते हैं जिसका ये सिंबल होता था मैथ्स के अंदर, तो वो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देता है। और नेगेटिव का हिसाब ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल चुकी होगी आपको उसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हर चीज़ जो होगी वो माइनस में चली जाएगी। तो बिल्कुल ये हिसाब है हमारा इसका कि हमें अल्लाह ताला ने ईमान दिया, इस्लाम दिया اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محروم رکھا اور باقی تمام چیزیں دے دیں. یہ وہ ڈیسائیڈنگ چیز ہے اسلام کا ہونا, یہ اصل میں ایمان کا ہونا یہ ڈیسائیڈنگ چیز ہے کہ اب ڈیفائن صحیح معنوں میں کیا جائے گا کہ اب آپ کی جو صحت ملی تھی اب آپ صحت کے ساتھ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت ہینڈسم گڈ لکنگ پیدا کیا تھا تو وہ کیا کرے گا. جو لوگ شو بزنس میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے گڈ لکنگ لوگ ہوتے ہیں, اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, صحت کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں, اٹریکٹیو لکس ہوتی ہیں ان کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ پھر اس چیز کو کہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کہاں ان کیش کر رہے ہوتے ہیں. پوری جوانی جو ہوگی اس کو کہاں اس کو ایگزاسٹ کریں گے. جو پلیئرز ہوتے ہیں اب وہ ان کو جو چیز دی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس, ظاہر بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے, اتنی گرمی کے اندر یا سردی کے اندر ہر رات کے اندر کھیلنا, جو مرضی اسپورٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت وہ چیزیں دی ہیں, وہ کس وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی صحت کی شکل کے اندر وہ پھر اس چیز کو کہاں انکیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دے دی ہے ایمان کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر دے دیا ہے صحت دی ہے, اس کو جوانی دی ہے, طاقت دی ہے, انرجی دی ہے اسے, تو پھر وہ اس کو بہت اچھی طرح خرچ کر سکتا ہے, بہت اچھی جگہ خرچ کر سکتا ہے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت دی ہے لیکن ایمان نہیں دیا تو وہ مکار ہوگا, سب سے بڑا فراڈ ہوگا, وہ سب سے زیادہ دھوکے دینے والا ہوگا. اور مارکیٹ کے اندر بھی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یار یہ بندہ بہت چلاک ہے, بہت تیز بندہ ہے. کس سینس میں تیز چلاک ہے؟ نگیٹو سینس میں, لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے, ان کے ساتھ چیٹ کر لیتا ہے. ہم اسی کو سمجھتے ہیں نا زیادہ کننگنیس ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کی خراب تھی بالفرض, کوئی موبائل فون آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے خراب ہے اور اس کی ورتھ جو تھی وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر جب آپ نے پرچیز کیا تھا بالفرض وہ 20,000 کا یا چلیں 25,000 کا وہ فون تھا, اسمارٹ فون تھا. اب آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ بالفرض یہ 15 منٹ کے بعد ہینگ ہو جاتا ہے, 15 منٹ کے بعد اس کی بیٹری نکالیں گے دوبارہ ڈالیں گے تو پھر چیک کر سکیں گے اسے. آپ کو پتہ ہے یہ فالٹی آئٹم ہے, اس نے تو بکنا ہی نہیں ہے, بکے گا تو بہت ہی چند ہزاروں کا بکے گا صرف. آپ کسی کو اگر بیوقوف بنا کے وہ بیچ دیتے ہیں تو سب لوگ آپ کی انکلوڈنگ آپ کے پیرنٹس آپ کی تعریف کیا کریں گے؟ بہت اچھی تعریف کریں گے, تو بہت بڑا تیز نکلا ہے اس نے تو اس چیز کو, فضول سی چیز جس نے پھر بھی 12,000 کا بکوا دیا اسے, یہ تو 2,000 کا بھی نہیں بکنا تھا, یہ تو تھا ہی آئٹم خراب اور اس نے پھر بھی 12,000 کا بکوا دیا. تو آپ کی کس چیز کو, یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی کہ آپ کو بات کرنا آتا تھا, آپ کے اندر وہ چیز تھی کہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ جو ہے نا جج کر سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح کرنا ہے, تو آپ نے کیا کس طرح ڈیل کیا اسے, پھنسا لیا آپ نے اسے بری طرح سے, آپ نے غلط کام کیا. لیکن جنرلی عوام کے اندر, سوسائٹی کے اندر, فیملی کے اندر, فرینڈس کے اندر آپ کی تعریف کی جائے گی وہ, لیکن یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کیا چیز ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا چیز کاؤنٹ کی جائے گی وہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ذہانت دی, آپ کے اندر ججمنٹل کریکٹرسٹکس دی ہیں کہ آپ دیکھ کے بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ اس سے بات کس طرح کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان دے دیا ہے تو پھر آپ کو فراڈ تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ, کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے, لیکن اس ذہانت کو, اس عقل کو, اپنے جو بات کرنے کی صلاحیت ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو اسپیچ کی کوالٹی رکھی ہے, اس کو پھر آپ بہت اچھے طریقے سے کہیں استعمال کر سکیں گے, دین کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا ہے نعمتیں, کہ ایمان کی نعمت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, عقل بھی دے دی, پیسہ بھی دے دیا, یہ سب کچھ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے جاری بھی رکھا اسے, ان میں سے کوئی چیز گم نہیں ہوئی, میری جو بھی ایج ہو گئی ہے اس ایج کے دوران ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو گئی. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اتنے سال صحت رہی بعد میں ضائع ہو گئی, اتنے سال پیسہ تو تھا, مال تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایسے حالات ہوئے کہ سب کچھ گیا ہاتھ سے, یا یہ کہ بندہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور بعد میں جا کے وہ پھسلنا شروع ہو گیا, شیطان کے بہکاوے میں آیا اور وہ ایمان, تقوی, للہیت تمام چیزوں سے بس گیا, دور گیا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس طرح کی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جاری بھی رکھا, قائم بھی رکھا. اب اس بندے کو امیجن کرتے ہیں کہ جو جس طرح میں پہلے اگزامپل دے رہا تھا کہ وہ کسی فقیر کے ہاں پیدا ہو گیا, اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فقیر کے ہاں جب بھی دیکھتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی بچے کو اٹھایا ہوگا, چاہے گرمی ہے, سردی ہے, جیسا مرضی موسم ہے, دھوپ پڑ رہی ہے, جو مرضی ہے, بچہ ہمیشہ سو رہا ہوگا. وہ کیوں سو رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے نشہ دیا ہوتا ہے تھوڑا سا, اسے جاگے گا تو روئے گا بھوک کے لیے یا گرمی کے لیے, سردی کے لیے, وہ تھوڑا سا نشہ دے دیتے ہیں کہ وہ سوتا رہے, بس ریلیکس رہے گا, ہم مانگتے رہیں گے اس طرح کام چلے گا. اور ظاہر بات ہے پھر بڑے ہوں گے تو وہ ایک آپ کے بچپن سے جو چیز آپ کو فیڈ کی جا رہی ہے تو نشہ ہی بننا ہے پھر بڑے ہو کے. تو ایسے گھر میں بھی تو پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ. اب اس بچے کو امیجن کریں جو وہاں پیدا ہو گیا, اس میں اس کا کیا فالٹ تھا؟ उसे क्या कसूर था कि वो वहां पैदा हुआ। आपको ये बात पता है कि बालिग होने के बाद आपका हिसाब किताब शुरू हुआ है। अब अगर आपने बचपन में बिलफर्ज बचपन में आपने अपने अम्मी अबू को देख के नमाज पढ़ ली थी तो ठीक है, अल्लाह ताला उसको एक तरह का नफल टाइप सवाब देंगे आपको। बचपन में अगर कभी छोटी एज थी आपकी और आपके पेरेंट्स हज के लिए गए थे और आपने भी कर लिया तो आपको अल्लाह ताला उसका जो भी आपने चले फिरे थे उसके दौरान जो कुछ भी अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देंगे। लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं था और ना ही वो आपके फ़र्ज़ की रिप्लेसमेंट थी। वो कब शुरू होगा? जब आप बालिग हो गए, प्यूबर्टी की एज आपने लिमिट क्रॉस कर ली, बालिग हो गए हैं बाप, अब आपके ऊपर आपका हिसाब किताब शुरू हो गया है, अब आपका मामला शुरू होगा उसके ऊपर। तो ये बात तो ठीक है कि सही है कि जब से मैं बालिग हुआ तब से लेके मैं अपने तमाम अमाल का अकाउंटेबल हूँ, लेकिन वो जो सारा बचपन का टाइम गुजरा था, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ब्रॉटअप हुआ था, जिस तरह के पेरेंट्स थे, जिस तरह के लोग थे और जो मेरी पर्सनैलिटी बन गई थी, अगर मेरी पर्सनैलिटी थी ऐसी कि बिलफर्ज मेरे घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड वेल बिहेव्ड हर लिहाज से, मेरी स्कूलिंग भी ठीक हुई, बाद में मैंने खुद मैंने गलत कंपनी में रह के मैंने बदजुबानी सीख ली, गालियाँ सीख ली मैंने देनी, इसको समझ लिया कि ये मेरे लिए ये हीरोपन होगा मेरे लिए कि मैं भी इस तरह की बातें करूँगा, इस तरह से बोलूँगा, ये हीरोपन है। तो उसके ऊपर तो मेरी बहुत सख्त पकड़ है। लेकिन उस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है कि जो पैदा ही ऐसे घर में हुआ कि माँ बाप ही गालियाँ इस्तेमाल किया करते थे, स्कूलिंग तो हुई नहीं सिरे से। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इंसाफ और अदल जो करना है वो ये दोनों सिनेरियोस को देख के करना है। ये एग्जामिनेशन हॉल तो नहीं होगा ना कि आई डोंट केयर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके घर के अंदर आपके फैमिली के अंदर कोई इस फील्ड का है जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बिलफर्ज, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस फील्ड है तो मैं एग्ज़ाम किस तरह लूँगा, सबको एक जैसा टेस्ट दूंगा मैं, सबका एक तरह का हिसाब होगा, असाइनमेंट क्विजेस वगैरह हर तरह की होगी। हो सकता है उनमें से कोई ऐसे घर में रहता हो जहाँ पे वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कंप्यूटर या लैपटॉप या इंटरनेट या बिजली हो तो वो अफोर्ड कर सकेंगे कंप्यूटर चलता रहे। एक ऐसा घर भी होगा जहाँ पे ये फैसिलिटीज़, लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर चल रहा है, यूपीएस चल रहा है, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं एग्ज़ाम किस तरह लूँगा उनका, इरिस्पेक्टिव होके कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, घर में कोई बढ़ा था पढ़ाने के लिए कि नहीं था, कि और से आपने हेल्प ली, मैं तो इरिस्पेक्टिव होकर पढ़ा रहूँगा। लेकिन अल्लाह ताला का जो हिसाब, अल्लाह ताला के यहाँ जो अदल होना है वो इस तरह नहीं होना। अल्लाह ताला ने जो हिसाब किताब लेना है और जो अल्लाह ताला के यहाँ अदल होगा वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव ग्रेडिंग के हिसाब से होगा कि जिसको जिस माहौल में पैदा किया, जिसको जिस हिसाब में पैदा किया, जैसी नियमतें दी थी, जैसे सिनेरियो दिया था, जैसी इन्वायरमेंट दी थी, उसके हिसाब से अल्लाह ताला उसको जज करेंगे। जिस तरह के एक हदीस का मफहूम है कि रसूलल्लाह सल्लम ने सहाबा से कहा था कि अगर आपको जो आमाल करने हैं अपनी बख्शिश के लिए, अगर आप उनमें से कुछ हिस्सा छोड़ दिया ना, अक्सरियत कर ली लेकिन थोड़ा सा हिस्सा छोड़ बैठे अगर आप, तो आपकी पकड़ हो जानी है। और एक बहुत ऐसा आएगा कि लोग जिन्होंने करना तो बहुत कुछ था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने कोशिश भी की लेकिन बहुत थोड़ा कर पाए, हालात ऐसे नेगेटिव थे कि वो कर बहुत थोड़ा पाए, उनके लिए भी किफ़ायत कर सकता है। तो अल्लाह ताला क्या, ये रिलेटिव ग्रेडिंग है इस तरह की। अल्लाह ताला ने किसी ऐसे घर में पैदा किया कि जहाँ पर ईमान या इस्लाम इन चीज़ों की बात क्या, बिल्कुल ही कुफर के माहौल में अल्लाह ताला ने पैदा किया। जो हमारे यहाँ नॉर्मली जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं या जो दीनी जमातें होती हैं, वो आपको पता है अगर बाहर के मुल्कों का दौरा करते हैं तो किन मुल्कों में जाते हैं वो, नॉर्मली अगर आप किसी का सुनते हैं किन मुल्कों में जाते हैं वो, इंग्लैंड गए हुए हैं वो, यूएई गए हुए हैं, सऊदीया गए हैं, अमेरिका गए हुए थे दौरे के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, इस तरह की स्पीचेस मिलेंगे आपको। जो बिल्कुल रिमोट किस्म के इलाके हैं वहाँ पे कौन गया हुआ है, कोई नाम सुना है कि कोई इन जगहों पे गया हुआ है? अफ्रीका के अंदर बेशुमार मुल्क है, नाम तक नहीं पता हमें कितने मुल्क हैं, उनमें कौन गया हुआ है स्कॉलर आज तक, कौन सी दीनी जमातें गई हैं? जो ऊपर हमारे नॉर्थ के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर जो नॉर्थ है, इसके अंदर जो ममालिक, इन मुल्कों में कौन गए हुए, कौन सी जमातें गई हुई इन मुल्कों के अंदर? या जिस तरह अभी जो बर्मा की बातें हुई, बर्मा कौन सी जमात गई, कौन से स्कॉलर गए हैं? तो उन लोगों के अंदर वहाँ पे अगर कोई पैदा हुआ जिसकी लैंग्वेज ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी, तो ना कोई इंटरनेट से उस तरह का फ़ायदा उठा सका, ना वहाँ पे गए, और हम ये कहें कि नहीं वो फिर भी जाएगा जहन्नम में क्योंकि वो कलमा गो नहीं था, या ऐसे माहौल में नहीं पैदा हुआ, या जो कुछ भी है, या जिस तरह मैं पैसे की नियमत की बात कर रहा हूँ तमाम चीज़ें उनके ऊपर कि जो वहाँ पैदा नहीं होता, तो वो ये तो फिर कुछ हद तक ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो फिर उसके साथ थोड़ा सा अनफेयर हो गया और मेरे साथ फेवरिज्म हो गया कि मैं पहले से ही बाय बर्थ में मुस्लिम हूँ तो मेरे साथ तो फेवर हो गई कि मैं तो जाऊँगा जन्नत में। अब और वो जहन्नम में जाएगा क्योंकि वो बाय बर्थ हिंदू है या वो बाय बर्थ जो है वो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है, या बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हैं वो। या पाकिस्तान के अंदर भी जो बिल्कुल ही जो सिंध के अंदर के एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, हमारे यहाँ वहाँ आम आवाम तो बलूचिस्तान के मिसाल के तौर पर शहरों के नाम ही नहीं ले सकते, क्वेटा ज़ियारत के अलावा पता ही नहीं है किसी को कि और वहाँ पर कौन सी जगह है। या अब पिछले कुछ 10 साल पहले नाम सुना होगा कि जी ग्वादर का कोई जिक्र होना शुरू हो गया, अदरवाइज हमें इतना बड़ा बलूचिस्तान है, हमें पता है वहाँ पर कौन कौन रहता है। जिन लोगों की तरफ फोकस ही नहीं किया और हम ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे तो हर चीज़ बेहतरीन हो जानी चाहिए मेरे साथ, और उनके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। नहीं, जो कुछ भी हमें मिला है ना, इस चीज़ के ऊपर ये रखें माइंड में कि हम इस चीज़ के मसूल हैं, अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है, वी आर आंसरेबल। जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला ने अता किया है हमने इसका आंसर देना है। जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया है अब आपके, क्योंकि अभी तो अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तो आप लोगों का भी स्टार्ट होना है, और ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको अभी से ही इस टाइम के ऊपर ही आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया, तौफीक दे दी, चाहे जो मर्जी उसका असबाब थे, आपका अपना दिल था यहाँ पे आके कोई दीनी कोर्स करने का, या आपके पेरेंट्स ने भेज दिया, जो मर्जी रीज़न था, लेकिन कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी और नेमत हो गई आपके साथ कि आप यहाँ पे आ गए। अपनी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर ही आपको ये नेमत मिल गई कि आपको बुराई और अच्छाई का है तमीज़ हो गई है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जाके अब जो है वो आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ेंगे, आपकी तलावत बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी होगी, या अब आप आगे जाएंगे ज़िंदगी के अंदर तो आपने अगर तरावियां भी सारी की सारी पढ़ी और आपने हज उमरा भी किया तो आप ये समझेंगे बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, बहुत बख्शिश हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पर्सनल, ये तो लालची ईमान हो गया ना, ये तो लालची मुसलमान हो गया कि मैं वो अमल करूँ जो मुझे ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुँचाए। आपको अगर अल्लाह ताला ने एक ऐसे मुल्क में पैदा किया है जहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, 2 हफ्ते पहले हार्डली एक खबर पढ़ी थी मैंने ट्रिब्यून के अंदर कि पाकिस्तान का पिछले साल से अब का लिटरेसी रेट 2% और डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने के बजाय 2% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट और डिक्रीज हुआ है, बढ़ नहीं रहे, रेशियो के हिसाब से घट रहे हैं। और तो उस हिसाब से आप ये देखें कि किस मुल्क में हम जा रहे हैं जहाँ पे उल्टा एजुकेशन का रेट उल्टा जा रहा है, पॉवर्टी का जो रेट है, जो गुर्बत के हालात हैं वो और ज़्यादा बुरे हैं। और इस्लाम या मुसलमान होने का आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग, दुनिया क्या कहती है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ में काउंट करती है पाकिस्तान को। किस हिसाब से? आप क्रिश्चियन हैं तो आप महफूज नहीं हैं, आप इस्माइली हैं तो आप महफूज नहीं हैं, आप अहमदी हैं तो आप महफूज नहीं हैं, आप इवन मुसलमान भी हैं तब भी आप महफूज नहीं हैं, क्योंकि आपका फलाने फ़िरके से ताल्लुक है, फलाना फ़िरका वाला जो है वो उसको मारना चाहेगा। फ़िरका वारियत में कटे हुए हैं, बटे हुए हम लोग नस्लों के अंदर कटे हुए हैं, कि जो कुछ भी हमारे मुल्क के अंदर और बड़े शहरों के अंदर, कराची से शहरों के अंदर हो रहा होता है, इसके अंदर घूम फिर के क्या हो रहा होता है कि एक नस्ल जो है वो दूसरे नस्ल को मार रही होगी कि ये फलाना नहीं है, ये फलानी स्पीक, इसकी ज़ुबान ये नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी क्या हो रहा है। इस तरह के कटे फटे मुल्क के अंदर जहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा कर दिया है और इस ज़माने में पैदा किया है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कोई टास्क एट हैंड दिया आपको, कुछ आपने कुछ करना है उसके लिए, कुछ जिम्मेदारी आपके अल्लाह ताला ने सौंपी है आपको। ये भी हो सकता था कि आप इसी ज़माने में पैदा होते, एक कलमा गो फैमिली में पैदा होते, पैसे वाली फैमिली में पैदा होते, ऐसी फैमिली में होते जो आपको एजुकेशन दे पाती, उन तमाम चीज़ों में पैदा होते, लेकिन आप पैदा होते बिलफर्ज कहीं कनाडा के अंदर, तो वो और सिनेरियो था। अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पैदा किया है और वो है भी मुस्लिम कंट्री कहने को, तो यहाँ पर इसका मतलब आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियाँ, यू हैव अ लॉट टू डू। और अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहना आपसे कि आपने बाद में मरने के बाद, अल्लाह ताला ने जैसा बाकी दुनिया के अंदर आपको किस तरह जज किया जाएगा, सबसे एक कागज़ जिसके ऊपर पूरे बंदे को जज किया जाता है, मिसाल के तौर पर CV जो होता है आपका जॉब के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको पूरा देख लिया जाता है कि आपकी पूरी लाइफ की परफॉर्मेंस क्या रही थी, आपकी एजुकेशन, आपके ग्रेड्स, आपके कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए थे वो, आपके कोई क्वालिफिकेशन ऐसी या कोई ऐसी स्किल जो अदर देन एजुकेशन आपने एक्वायर की थी, आपकी अचीवमेंट्स, फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपको जो जो टाइटल्स मिले थे, जो जो आपको अचीवमेंट्स के ऊपर सर्टिफिकेट्स मिले थे, तब चीज़ें एक कागज़ के ऊपर होती हैं। वो उस कागज़ को तो अल्लाह ताला ने देखना तक नहीं है, उसकी तो केयर ही नहीं करनी है अल्लाह ताला ने, क्योंकि उसके ऊपर ये तो नहीं लिखा होता ना कि इसमें से कितना हिस्सा हलाल था कितना हराम था, उसमें यह तो नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ताला ने आपको ये तो नहीं देना कि जो हाईएस्ट आप जो है ना स्केल लेके जाएंगे ना, अगर आप 21 ग्रेड के या 22 ग्रेड के ऑफिसर बन के रिटायर हुए थे तो आपके लिए कोई जी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम लोग दुनिया के अंदर टच स्टोन समझते हैं कि ये मेयार है कामयाबी का, वो तो अल्लाह ताला ने उसको देखना तक नहीं। अल्लाह ताला ने किस चीज़ को देखना है? आपके अंदर यहाँ पे क्या था, ईमान क्या था, आपके अंदर कितना था यहाँ पे, और आपने उसके लिए किया क्या, अमल आपने क्या किए थे, उसके हिसाब से अल्लाह ताला को राज़ी करने के हिसाब से आपने क्या अमल किए थे। हम लोग तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के हिसाब से कोई हमने कोई सफ़र भी नहीं किया होगा ऐसा, आपको काउंट किया जाए कि जी आपने कोई ट्रैवल किया हो उसके लिए, आपने कितने पैसे आज तक खर्च किए हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इन चीज़ों के हिसाब से जवाब देना है कि हाँ हम मैंने क्या करना है, मेरा कोई रोल होगा जो मैंने प्ले करना है। ये नेमतें तमाम चीज़ें अगर अल्लाह ताला ने आपको दे दी है ना, तो जितना कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उतना कुछ आपसे फिर पूछा भी जाएगा कि अब आपने एंड रिजल्ट क्या दिखाना है अल्लाह ताला को आगे जाके, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को क्या दिखाना है, आपके इर्गिर्द इतने जो लोग बुरे हाल के अंदर है, इस्लाम जो इतने बुरे हाल के अंदर है, उसके लिए आपने क्या किया, और इतनी खूबसूरत एज के ऊपर आपको ये तमाम चीज़ें मिल गई हैं। जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बिलफर्ज को बात सही बता भी दे जाए ना, तो वो अब इतने अपने लाइन के अंदर वो हो चुके होते हैं कि अब वो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते अपने अंदर। वो ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं ये तमाम चीज़ें छोड़ता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो हर चीज़ ग्रेजुअली करेंगे। और ये जो एज है आप लोगों की, इसके अंदर ये है कि अभी आप लोग हर किस्म का जो है वो जज्बा भी जिस तरह होता है ना, तो वो उसको करने का अप्लाई करने का आपके पास एनवायरमेंट भी होती है। तो मेरी अगर ये फील वेलफेयर अपने हिसाब से एंड में आके थोड़ा सा इसको कंक्लूड करता हूँ बात को, ताकि अगर आप लोग कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी कर लें। वेलफेयर ये है कि अगर मेरी फील्ड ये कंप्यूटर साइंस है वो, तो अल्लाह ताला ने उस बारे में ये नहीं पूछना कि मेरे कितने यूनिवर्सिटी में मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, उनमें से कितने थे जिनको ये अचीवमेंट मिली थी, मैं कितनी दफ़ा जो हूँगा वो मेरा फीडबैक सबसे अच्छा था कि मैं टीचर ऑफ द मंथ या टीचर ऑफ द सेमेस्टर रहा हूँ, या मेरी और कोई अचीवमेंट्स, ऐसी कोई चीज़ काउंट नहीं की जाएगी उसके अंदर। ये तमाम कुछ जो है ये तो रिस्क कमाने के लिए है, ये तो सिर्फ ये है कि जो आपको अल्लाह ताला ने वक्त दिया था क्योंकि आपने उसके अंदर एक टाइम गुजारना था, तो ये एक आपका एक लाइवलीहुड कमाने का एक जरिया था। दिस वाज नॉट एट ऑल द टारगेट, टारगेट कुछ और है। वो टारगेट अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, तो अपनी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो ये है कि आपका जो जितना आपके अंदर इल्म जो होता है ना, इल्म एक अलग चीज़ है, इल्म से तक इल्म और तकवा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इल्म बहुत होगा, बहुत बड़े बड़े दीनदार लोग ऐसे होंगे जिनका इल्म बहुत होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके दिल के अंदर तकवा ना हो। और ये भी हो सकता है कि एक बायर रेड़ी के ऊपर छल्ली बेचने वाला जो होगा, जिसके पास इल्म कुछ भी नहीं है ख़ास, उसको ख़ास नहीं आता चीज़, और उसको दुनियावी इल्म भी नहीं है और उसको दुनिया उसका भी इल्म नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर तकवा बहुत हो, उसके अंदर खुदा खौफी बहुत हो, उसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस बहुत हो, तो वो चीज़ और होती है। तो ये आपको जो है ना खुद डिक्टेट करेगा, आपको खुद एक सेटिस्फाई करेगा कि आपने क्या काम करना है। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनीज रन करने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप जॉब और टाइटल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप में से सबसे कामयाब वो होगा जिसके पास सबसे लेटेस्ट फ़ोन होगा। तो लेटेस्ट फ़ोन मिसाल के तौर पर कौन सा आया अभी, सैमसंग का अगर S6 आया और वो भी ख़ास तौर पर एज देखा, तो वो नहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि कौन सबसे पहले वो हासिल कर पाता है, कौन सबसे पहले जो है ये गाड़ी नई मॉडल की आने वाली है, जिसने अभी होंडा सिटी के बारे में मशहूर है कि वो एक नया मॉडल आने वाला है, कौन सबसे पहले वो ले पाता है। गाड़ियाँ जब लॉन्च होती है ना इस तरह, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पहले आइटम्स होते हैं ना टॉप 10 या इस तरह, उनकी ख़ास बोली लगती है कि ये जो होंडा का ये फलाना मॉडल इस साल आया था ना, सबसे पहले उसका लेने वाला ओनर ये था। अगर बिलफर्ज उसकी गाड़ी की कोई भी कॉस्ट जो है उसकी वो 2 मिलियन रुपीज़ है, 20 लाख रुपए है, तो उसकी स्पेशल एक प्राइस होगी कि आपको सबसे पहली चीज़ मिल रही है, लोग पैसा खर्च करते हैं ना उसके पीछे। तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं देखना, कोई मल्टीनेशनल चेन का बायर का कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, जैसा पता नहीं आप लोगों की क्या एज थी जब ये मैकडोनल्ड्स और KFC आए थे, तो सड़कों तक बायर रश लगा होता है, सड़कों तक बाहर रश लगा होता है, लोग लाइन में लग के इतनी गर्मी घंटों के हिसाब से 3-3 घंटे बाद जाके उनको बर्गर मिल रहा है वो। लेकिन उसके पीछे के लोग क्यों खुआरी काट रहे होते हैं ये वाली, इतने ज़्यादा लोग तकलीफ क्यों काट रहे होते हैं, क्यों, ताकि फेसबुक पे लगा सकेंगे सबसे पहले मैंने खाया था बर्गर जाके वाला, ताकि किसी और को जाके बता सकेंगे हाँ हम लोग जो थे ना, पहले जो ओपनिंग थी ना, हम लोग गए थे उस ओपनिंग के अंदर। किस चीज़ के पीछे अपनी इतनी एनर्जी लगाई, इतना टाइम लगाया अपना, फिर पैसा भी उसके ऊपर लगा दिया उन्होंने, इतने इतने किस चीज़ के ऊपर, जिसकी इन्जॉयमेंट या जिसका जो भी उसका आउटपुट था वो कितने था, चंद घंटे भी नहीं रहना, टेस्ट उसका कितने मिनट रहेगा, एक दो घंटे के अंदर तो उसने वैसे भी हजम हो जाना, ख़त्म हो जाना उसने, लेकिन उसके पीछे लोग किस कदर जो है वो मुश्किल उठाते हैं, कितनी वो तकलीफ़ उठाते हैं उसके पीछे। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने आखिरत के हिसाब से जज करना है ना, उन चीज़ों को आप लोग अपने करियर के हिसाब से पिन पॉइंट करना है कि हाँ मैंने क्या करना है आगे जाके, अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया है ना, मैंने क्या अमल करना है उसके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला को सिर्फ स्कॉलर्स चाहिए, कि कोई बस दीन फैलाने वाले लोग हों, सिर्फ को मौलवी तबका हो, ऐसी बात भी नहीं है। दीन का इल्म तो सबके पास होना चाहिए, एक ख़ास लेवल तक का तो एक इल्म सबके पास होना चाहिए, लेकिन हर लेवल के ऊपर, सोसाइटी के हर लेवल के ऊपर मुत्तकी लोगों की ज़रूरत है। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस में कोई बंदा है, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर है, चाहे वो बंदा है जो बैतुल माल के ऊपर है, जिसने गरीबों तक माल पहुंचाना है या उन्हीं में करप्शन करनी है, या चाहे वो बंदा जो है वो बिल्कुल ये किसी कम एक प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर काम करे जिसके अंडर लोग एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, और उसके ऊपर ये है कि उसने हलाल तरीके से कमाया और उन लोगों की, तमाम लोगों की ख्याल रखा। हर लेवल के ऊपर चीज़ों की ज़रूरत है। जितनी भी नेमतें हैं ना, इन तमाम नेमतों को तन्हाई में आप लोग, क्योंकि जब गैदरिंग होती है, दिन का वक्त होता है, तब इंसान की सोच इस तरफ नहीं जाती। ये रीज़न है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम को भी ये कुरान के अंदर कहा है कि रात के वक्त नमाज़ पढ़ने का क्यों कहा है, ताकि तमाम मसरूफियत से अलग हो के। तो इसी तरह ही अपनी ना पूरे जिस्म की एक एक नेमत को आप काउंट करना कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें आपको दी हैं और कंटिन्यूसली दी हैं आपको। मुसलसल आपको पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स इस टाइम मरते हैं और कितने सेल्स नए रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर एक बंदे की लाइफ जो है अल्लाह ताला ने 70 साल दी है, इसका ये मतलब नहीं है उसकी बॉडी का हर सेल 70 साल तक रहा था, वो कितने उनमें मरते हैं, कितने उनमें से दोबारा पैदा होते हैं। वो तमाम नियमतों की जो प्रोसेस चल रहा, जो मैंने मांगा भी नहीं थी अल्लाह ताला से, उन तमाम नियमतों को काउंट करें आप। जो अल्लाह ताला ने आपको बाहर नियमतें दी हैं उनको काउंट करें। एजुकेशन दी है, क्योंकि क्रीम, हम लोग क्रीम में फॉल करते हैं इस मुल्क की। एजुकेशन रेट क्या है, अल्लाह ताला ने हमें फिर भी उसमें पैदा किया। पॉवर्टी लाइन क्या है, गुरबत का रेट क्या है, अल्लाह ताला ने हमें उसके अंदर पैदा किया। कितने लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी होगी इतनी कम एज के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें काउंट किया। तो वो जो क्रीम में अल्लाह ताला ने पैदा कर लिया ना अब आपको, अब उसके बाद आपका ये काम ये है कि अब आपने उसके लिए कुछ रेसिप्रोकेट करना है। ठीक, मैं कोई बहुत लेक्चर तैयार करके ऐसा नहीं आया था, ब्रीफ सी बात थी कि मैं आपसे कर सकूं। तो हो सकता है कि रमज़ान के अंदर कुछ क्लासेस मैं आप लोगों की लूँगा। आप लोगों ने कोई कमेंट पास करना है फ्रीली पास कर लें, कोई क्वेश्चन पूछना है लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।